रुकू नंबर 4 पे चलते हैं। तबारक अल्लज़ी जअल फिस्समाई बुरूजा, बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें आफ्ताब बनाया और मुनव्वर माहताब भी यानी चांद, और इसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। उस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। रहमान के सच्चे बंदे, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर फरोतनी यानी आजजी के साथ चलते हैं, और जब बे इल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम है। वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा, और जो अपने रब के सामने सजदे और क्याम करते हुए रातें गुजार देते हैं। वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना सिर्फ अन्न अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा कान गरामा, जो ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख़ का अजाब परे ही रखना क्योंकि इसका अजाब चिमट जाने वाला है। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, और जो खर्च करते हुए भी ना तो इसराफ करते हैं और ना बुखल करते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदिल तरीके पर खर्च करते हैं, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया हो वो बजुज हक के कत्ल नहीं करते, ना वो जिना के मुर्तकिब होते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। इसे क़यामत के दिन दोहरा अजाब किया जाएगा और वो जिल्लत व ख़वारी के साथ हमेशा इसी में रहेगा। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा, सिवाय इन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है। और जो शख्स तौबा कर ले और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अपने रब की तरफ रजू करता है। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते और जब किसी लग़्व चीज पर इनका गुजर होता है तो शराफत से गुजर जाते हैं, और जब इन्हें इनके रब की आयात सुनाई जाती हैं तो वो अंधे बहरे होकर इस पर नहीं गिरते। वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल्मुत्तकीना इमामा, और ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। आमीन। أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما, यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंद बाला खाने दिए जाएंगे जहां इन्हें दुआ और सलाम पहुंचाया जाएगा। इसमें वो हमेशा रहेंगे और वो बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कुल मा याबू बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फकत कज़्ज़बतुम फसौफ यकूनु लिज़ामा, कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआ और इल्तजा पुकार न होती तो मेरा रब तुम्हारी मुतलक परवाह न करता। तुम तो झुटला चुके, अबन करीब इसकी सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी। यह था आखिरी रुकू सूरत फरकान का। इसका उन्वान क्या है? रहमान के बंदे, इबादुर रहमान। और इसी पे आज की हमारी ये किताब भी है, आज के स्टडी सर्कल में ये किताब है रहमान के बंदे। इसमें जो भी बातें हम सुनेंगे इसकी काफ़ी तफसील है, जब आप बाद में इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए पूरे रुकू के अंदर बात तो बड़ी वाज़ह है, लेकिन चूँकि रहमान के बंदों का लफ्ज़ है, आप देखिए बंदे तो वैसे ही सारे ही रहमान के हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो खास उसकी मर्जी के काम करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हर बच्चा आपका बच्चा होता है, लेकिन जब बच्चा आपकी बात मानता है आप सबके बीच में क्या कहते हो, असल तो मेरा यही बेटा है, ये बेटा मेरी बहुत बात मानता है, ये बच्ची मेरी बहुत अच्छी है। तो ये अच्छे बच्चों की अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि जो अच्छे बंदे हैं, वैसे तो सब बंदे ही उसी के हैं। 14 खूबियां बयान की हैं, इस नीयत से सुननी है और साथ ही साथ अपना जायजा भी लेना है कि क्या मेरे अंदर ये बातें मौजूद हैं कि नहीं। सबसे पहले जमीन पर नरम चाल चलते हैं, सोचिए अपनी चाल को, बजाय इसके कि दोबारा हर एक पे आपसे पूछूं, साथ ही साथ अपने अमल की बातें नोट करें। क्या मेरी चाल नरम है, कैसे चलती हूँ, तकब्बुर से, पाँव पटक पटक के, जोर से पेंसिल हील को मार मार के, दूर तक ठक 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 चलती जाए, क्या अंदाज है मेरे चलने का। जाहिल उनसे मुकाबला करें तो कहते हैं तुमको सलाम, यानी उलझते नहीं, बहसे नहीं करते। यहां सलाम से मुराद सलामे मुलाकात नहीं, सलामे मुतारिका है। दो सलाम होती है ना, एक आप किसी को आते हुए करते हैं और एक होता है जाते हुए। तो ये कौन सा सलाम है कि बस सलाम अलैकुम, तुम अपनी राह हम अपनी राह, यानी इससे क्या पता चला, बहस नहीं करते, मुतारिका तर्क छोड़ते हुए, जैसे वापसी का जो सलाम होता है, यानी अब हम तुमसे इजाजत चाहते हैं, रुख्सत, सलामे रुख्सत कह लें आप, अब रुख्सत चाहते हैं। पूछिए अपने आप से, बहसें करती हूँ क्या, अभी भी मेरी तबीयत में है कि मैं बहस करूं, और खास तौर पे उन बेचारों से जिनको कुछ पता ही नहीं। उनकी रातें सजदों और कयाम की रातें होती हैं, पूछें अपने आप से हमारी रातें कैसी होती हैं, बिस्तरों पे करवटें बदल बदल के, ये सजदे और कयाम की रातें हैं हम इबादुर्रहमान। अपने आप को साथ साथ चेक करते जाएं, फिर जहन्नम के अजाब से बचने के लिए दुआएं करते हैं, फिर खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची ना बुखल बल्कि एतदाल। पूछिए अपने आप को, मेरे खर्च की तब क्या रफ्तार है, क्या महीने के शुरू में ही सारा खर्च तो नहीं हो जाता और आखिरी दिनों में उधार लेना पड़ता है। अपनी पसंद की चीज़ नज़र आ गई तो सारे हफ्ते के पैसे उसी एक चीज़ पे दे दिए, यानी ये इतना बड़ी बात है। आप देखिए कि एतदाल, खर्च के अंदर एतदाल। और मैंने देखा है कि बंदा मोमिन की शान क्या होती है कि अपनी ज़ात पे 1 डॉलर भी वो खर्च करते हुए 10 दफ़ा सोचता है, ज़रूरत है कि नहीं, क्या फ़ायदा, चलो छोड़ो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़े तो बेहिसाब। वही उस्मान गनी वाली कैफियत याद रखे। आज हमारा हाल क्या हो गया, अपनी ख्वाहिशात के नाम पे तो हम क्या कुछ नहीं खर्च करते, हजारों की चीज ले आते हैं और जहां जरा किसी और काम की जरूरत पड़े तो हम 10 दफा सोचते हैं कि क्या वाकई इसकी जरूरत है कि नहीं। तो अपने खर्च पे भी एक तवाजुन रखना है इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली बात है कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं करते, अल्लाह की हराम करदा जान को नाहक कत्ल नहीं करते, औरों को तो कत्ल नहीं करते लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपनी ही औलादों को कत्ल करते हैं, उसके ऊपर सोचने की जरूरत है अपने अमल को। फिर उसके बाद जिना के मुर्तकिब नहीं होते, असल जिना का फेल ना ही सही तो सवाल अपने लिए लिख लें कि क्या मैं जिना की कुरुबात से बचती हूं। फिर तौबा करके नेक अमल इख्तियार करते हैं। कुरान पाक में तौबा का नजरिया इन आयात से ज्यादा खूबसूरत कहीं और नहीं समझा जाता, आयत नंबर 70 और 71। कभी आपको कहीं दर्स देना पड़े तो ये बेहतरीन आयतें हैं इस दर्स के लिए। पीछे सूरत निसा की भी कुछ बताई थी, उसमें एक और मुख्तलिफ अंदाज है, इसमें किसी और रंग से है, लेकिन अपने गुनाहों पे तौबा करते हैं और फिर उसके बाद नेक अमल भी करते हैं। सिर्फ तौबा तौबा की तस्बीह नहीं पढ़ते, अमल करते हैं। फिर उसके बाद झूठ के गवाह नहीं बनते, झूठ बोलने की बात नहीं है यहाँ, झूठ का गवाह इंसान कब बनता है, जब किसी के झूठ के ऊपर मुआवनत कर दे, झूठा माहौल, झूठा मुआशरा। नबी सल्लम की मैं जब वो हदीस सोचती हूँ ना, कि आपने रमज़ान ही के तनाजुर में आती है कि मल्लम यदा कौलत दूरी व अमिला भी फलई सल्लाही हाजतन यदा शराबहू व तआमहू, जिसने झूठी बात कहनी और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं कि वो खाना छोड़ दे या पीना छोड़ दे। तो मैं सोचा करती थी जब मैं शुरू, बहुत सारे बंदे की इब्तदा के दिन होते, मैं कहती थी झूठ बोलना तो समझ में आता है लेकिन झूठ की जिंदगी क्या होती है, तब मुझे समझ में आती है झूठा स्टेटस सिर्फ दिखावे के हैं, हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। पूछिए अपने आप को, क्या मैं झूठ की जिंदगी तो नहीं गुजार रही? वाकई जो मेरी हैसियत, मेरे घर, माल, मेरी गाड़ी, मेरी चीजों से दिखती है, वो हकीकत में वो मेरा असल है भी कि नहीं? रिश्ते लेने देने के वक्त में बेशुमार झूठ होते हैं, इसके गवाह नहीं बनना इंशाल्लाह। फिर लव चीजों से गुजरना है, वहां रुकना नहीं। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में रहते हुए आपको लव ना मिले, आप कहीं जा रहे हैं और म्यूजिक ना हो, खड़े नहीं होना। झगड़े भी होंगे, लोग फुहश काम भी करेंगे, ऐसे लोग शराफत से गुजर जाते हैं यानी शरीक नहीं होते। ऐसी महफिलों में टिक के नहीं बैठे रहते, उस लव के अंदर शिकार नहीं होते, बल्कि वहां से फिर इज्जत से उठ जाते हैं। झगड़ा नहीं करते, फितना नहीं फैलाते, लोगों को मुनाफिक के फतवे नहीं दे जाते, लेकिन बस शराफत से अपना दामन बचा के निकल जाते हैं कि मुझे तो अपनी कब्र को महफूज करना है अजाबों से। उसके बाद अगली बात भी बहुत ही ज्यादा आंखें खोलने वाली है कि जब रब की आयतें सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर नहीं गुजरते। अंधे बहरे होकर गिरना क्या होता है? कि एराज और गफलत से नहीं बरतते, सुनी अनसुनी नहीं करते, देखी अनदेखी नहीं करते। मैं सोचती हूँ कि कुरान खानियों के जितने सफर हैं, तिलावत के जितने सफर हैं, क्या वो ऐसे ही तो नहीं होते कि एक तरफ कुरान की तिलावतें भी हो रही हैं और साथ गुना और तमाम नाफरमानियों के काम भी हो रहे हैं? बहुत बड़ी इसके अंदर वईद है उन लोगों के लिए कि जो कुरान को सुने और उससे नसीहत लिए बगैर गुजर जाए। फिर अगली उनकी बात क्या थी? अपनी बीवियों और औलाद से आंखों की ठंडक चाहते हैं और परहेजगारों का इमाम बनने की दुआ करते हैं। सबसे खूबसूरत दुआ है जो एक औरत अपने घर के बारे में मांग सकती है। मुझे जितने लोग शौहर की बात को पूछें, बच्चों का मसला पूछें, शौहर नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे बात नहीं सुनते, मैं कहती हूँ जाओ सूरत फुरकान की आयत 74 को पढ़ लो। कहते हैं कितनी दफ़ा पढ़ें, वजीफा करना इसका, कितनी दफ़ा वजीफा करें? मैं कहती हूँ अल्लाह के बंदो ये वजीफा नहीं है, अपने दिल से तड़प के एक दफ़ा कह के देखो कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनि वजालना लिल्मुत्तकीना इमामा। बिगड़े हुए हैं, अल्लाह रास्ते पे ले आएगा। मैं कहती हूँ कि यंग लड़कियों को ये दुआ पढ़ानी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, अगर वक्त से पहले वो अच्छे शोहर और अच्छे बच्चों की दुआ कर लेती हैं तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा इसकी नियत से। अगर शादी हो शुदा औरत पढ़ेगी तो अब शोहर बिगड़े हुए हैं तो चले हालात आ जाएंगे। सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जो शादी से पहले इसको पढ़ता है। हम कब पढ़ते हैं? जब पानी सर से गुजर जाता है, जब बच्चे भी नाफरमान और शोहर भी नहीं। अच्छा इंसान कौन होता है? जो वक्त से पहले रहता है। वजअलना लिल्मुत्तकीना इमामा, मुझे ये बात भी नहीं समझ आती थी कि ये क्या बात है, मुत्तकियों का इमाम बना। मैं सोचती थी पता नहीं क्या वजह इसकी, लेकिन फिर अब अल्लाह ताला ने जब दिल खोला तो पता चला कि अल्लाह मुझे ऐसा नमूना बना कि मुत्तकी मेरी पीछे अमल करें, यानी मुझे एक नेकी का ऐसा संग मील बना दे कि लोग मुझे देखते हुए नेकी करने लगे। समझ में आई बात आप लोगों को? यानी मैं पायनियर हूं नेकियों में। हम अमूमन किस चीज में आगे बढ़ते हैं कि गुनाहों के पेशरो बन जाते हैं। मुझे नेकियों का पेशरो बना, मेरी जात से ऐसे ट्रेंड फूटे, मेरी जात से ऐसी खैर फूटे कि वाकई मुत्तकियों का इमाम बन जाऊं। और वैसे भी अगर आप इसको लिटरली इमाम के मानी में लेंगे तो मेरे पीछे मेरे बच्चे इतने नेक हों या मैं इतनी नेक, मेरे यानी मिसाल है कि ज़हर मर्दों के लिए खासतौर पर यह बात होगी कि इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले भी मुत्तकी हों। देखिए एक होता है कि आपका मुत्तकी इमाम है, इमाम मुत्तकी है कि नहीं, और दूसरा है कि पीछे पढ़ने वाले कैसे हैं। मैं जब इस आयत पे आती हूँ और मैं इमाम सुदेस शुरेम या जो भी अब नए जो भी हरम के अंदर कुरान पढ़ा रहे होते हैं, मैं उनके बारे में सोचती हूँ। मैं कहती हूँ कि उनकी माओ ने न जाने कितने दिल से ये दुआ की होगी कि वजालना लिल्मुत्तकीना इमामा, कि अल्लाह हमारे बच्चों को मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमको बना दे। और अल्लाह ने वाकई उनको हरम के इमाम बना दिया। मैं आप सबके लिए भी यही दुआ करती हूँ, और कोशिशें आपने करनी है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी हरम के इमाम बना दे, हमें देख के रास्ता बनाए। अल्लाह ताला वाकई सबके घरों के मसले दूर करके उनके बच्चों को उनकी आंखों की ठंडक बनाए। आखिरी चीज जो इनकी मुत्तकियों की थी वो क्या है कि वो सब्र करते हैं, और सब्र तो वही बात है कि अल्लाह ताला फिर जब साथी को किसी इंसान को सब्र की तौफीक दे देता है तो वो उसका मतलब ही है कि वो पूरे दीन पे अमल करने लगता है। अब ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या देगा? सवाल आता है ना कि ये तो इतना कुछ कर दें, अल्लाह ताला इनके लिए क्या करेगा? तो तीन बड़ी ही खूबसूरत बातें हैं इसमें, जिसकी तमन्ना भी करनी है और जिसके लिए तड़पना भी है कि रब उनको दे दे। उलाइका युजज़ौनल गुरफा, इनको बुलंद खाने मिलेंगे, जन्नत की बुलंद मंजिलों में होंगे, हाई स्टोरी, जैसे मैं इसको कहती हूँ सुपरस्टार। दुनिया में कोई होटल होता है तो वो 5 स्टार तक होता है, 6 या 7, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को 100 स्टार होटल दे देंगे, और वो होटल नहीं होगा, वो उनका अपना घर होगा, यानी उनकी शान जन्नत में बुलंद कर देगा। फिर दूसरी बात, वयुलक्कौन फीहा तहियतुम व सलामा, अल्लाह ताला इनका इस्तकबाल करेगा, सलाम कहेगा इनको। तसव्वुर में लाएं वो दिन कैसा होगा जब हम जन्नत में जा रहे हों और दाखिले के दरवाजे पे देखें कि अल्लाह सुबहान तआला अपने जलाल और पूरे कमाल के साथ वहाँ मौजूद है आपको इस्तकबाल करने के लिए। जैसे दुनिया की शादियों में आप देखते हैं कि मेज़बान जो होता है वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, बस उस वक्त लोग ये भी नहीं ख्याल करते कि घर की औरतें गैर मर्दों के इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं, और बाज़ लोग तो फिर हाथ भी मिलाते देखे गए। अल्लाह ताला हम पे रहम कर दे, अगर रब की मेहमानी और उससे इस्तकबाल कराना है तो ऐसी चीज़ों से बचना पड़ेगा। खालिदीन फीहा, तीसरी खुशखबरी, हमेशा रहेंगे वहाँ, और कितना प्यारा ठिकाना मिला ये तो जाके ही पता चलेगा। अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों का अहल करवा दे। चाहूँगी कि इस रुकू पे इस नाते से तदब्बुर कीजिए कि क्या मैं इबादुर्रहमान में से हूँ, अपने टैक्स पे नजरें रखें और देखें कौन सी खूबियां मेरे अंदर हैं और कौन सी नहीं।
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
كتنے فیصد لگا آپ کو خود ہی اپنے آپ کو ہی اپنے نمبرز دے کے پوچھ لیں کہ واقعی کتنا کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے اور کتنا کام الحمدللہ ہو چکا. چلیے سورت شورا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. توسین میم حروف مقطعات ہیں. یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں. ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے. اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے. ان لوگوں نے جھٹلایا ہے. اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مذاق کر رہے تھے. کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں. ان نفی ذالک الآیا وما کان اکثرہم مؤمنین. بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں. اور تیرا رب وہی غالب اور مہربان ہے. یہ تھا رکوع نمبر 5. اس کا عنوان کیا ہے؟ شاید کہ تم اپنی جان کھو دو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کیا گیا. سورت شروع کا انداز ہی دیکھیے کہ کتنا زبردست ہے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ کہ شاید ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنی جان کھو دیں گے. ایک سچے داعی دین کا یہی مزاج بتایا گیا کہ وہ لوگوں کی بری حالت ان کے ایمان سے دین سے دوری پر اپنے آپ کو کڑھاتا ہے جلاتا ہے. تو شروع میں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت بتائی گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان کو کوئی نشانی بڑی سے بڑی دکھا بھی دیں گے تو یہ مانیں گے نہیں کیونکہ یہ رحمان کی نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. کوئی بھی نئی بات آتی ہے تو اس پہ اعراض کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ پھیلی ہوئی کچھ نشانیاں دکھائیں کہ دیکھو جو آپ سے نشانی مانگتے ہیں کیا ان کو سورج چاند ستارے یہ سبزے یہ سب کچھ نہیں دکھتا. اصل بات کیا ہے کہ جس نے اللہ کو پہچاننا ہے وہ بغیر کسی معجزے کے آئے ہوئے بھی پہچان سکتا ہے کیونکہ پوری کائنات لگتا ہی ایسے ہے کہ ایک معجزہ ہے. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کے غم میں گھلنا ہے. کوئی بات کوئی ایسی بات جو ہم گھلے ہوں. عموماً ہم کس غم میں گھلتے ہیں؟ اپنی جان کے، بچوں کے، بیٹیوں کے، رشتوں کے، بیٹوں کی اچھے مستقبل کے غم لگے ہوتے ہیں اور لوگ لٹرلی کھلتے ہیں ان چیزوں میں، گھر کے، مال کے. اب سے ہم نے ایک نیا غم اپنی زندگی میں لگانا ہے اور وہ کیا کہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ملتی. اور یہ کہنے سے نہیں ہوتا، یہ دل میں لگتا ہے نا، خود بخود یہ بات ہوتی ہے. یہ ایک فیول جیسے ایندھن کا کام دیتا ہے آپ کے دین کے کام کرنے کو. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی بندہ جو دین سے دور ہے آپ اس کو دیکھیں اور آپ کے دل میں ایک دم تڑپ پیدا ہو، چوٹ پڑے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا بنے گا، ان تک ہدایت کی بات کون پہنچائے گا؟ اور ان شاء اللہ تعالیٰ جتنا آپ اس چیز کو مضبوط کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ کام کروائے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ علم سیکھ بھی لیں نا, بعض بہت لوگ علم والے ہوتے ہیں لیکن بات کیوں نہیں آگے ہوتی, درد نہیں, سب کو پتہ ہے. یعنی جب دین کے علم کے ساتھ تکبر آنے لگتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے چھوڑو, بس کہہ دیا تھا تو ٹھیک ہے, بتا دیا. لیکن جب سچی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان تڑپتا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 6. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا, قوم فرعون کے پاس, کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میرے پروردگار, مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو جھٹلا نہ دیں, اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج, اور ان کا مجھ پر ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا, ہرگز ایسا نہ ہوگا, تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ, ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں. تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے. فرعون نے کہا, کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا, اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے تھے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا, اور تو ناشکروں میں سے ہے. قتل کی طرف اشارہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ہوا خطا سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جب راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا, پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا, پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا. مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا, رب العالمین کیا چیز ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے. فرعون نے کہا, لوگو, تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. فرعون کہنے لگا, سن لے, اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا, اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر. آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اژدہا بن گئی, اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا. یہ تھا رکوع نمبر 6. اس کا عنوان کیا ہے؟ موسیٰ اور فرعون آمنے سامنے. اس میں ہم نے ابتدا میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا اس کا ذکر تھا, فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے 5 طرح کے خدشوں کا اظہار کیا, مجھے یہ خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے, میرا سینہ گھٹتا ہے, میری زبان نہیں چلتی, ہارون کو علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے, اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے. کس چیز کا؟ کہ جو قتل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ جائیے اور اپنا پیغام دیں اور کہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دیں. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں پیشی کا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ تان و تشنیع کی, بچپن میں ان کو جو پالا اس احسان کو جتلایا اور احسان فراموشی کا تانہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے کوئی اس چیز کو برا نہیں محسوس کیا، کوئی احساس کمتری نہیں آیا، بلکہ کہنے لگے ہاں میں نے ایسا کیا، نادانی میں تھا، جب نادان تھا نہیں معلوم تھا، اور اب ظاہری بات ہے کہ میں آیا ہوں، مجھے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ پھر یہاں موقع دیکھ کے بڑے پیارے انداز سے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار کروایا، اور اصل میں وہ جو خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی یہ دعویٰ کرتا تھا، اس دعوے کو توڑا گیا اور مشرق اور مغرب کے رب ہونے کی بات کی گئی۔ اس سارے رکوع میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے عمل کی جو باتیں بنتی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے جا کے بات بھی کرنی پڑے تو گھبرانا نہیں، کوئی کمی سامنے نہیں لانی۔ اگر زبان رکنے لگے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ دوسری اس سے یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ مناسب موقع دیکھ کے کی جائے گی، اور ہمیں اپنے لیے یہی چیز رکھنی ہے کہ دعوت دین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی طریقہ کار سے مدد لینی ہے جب ہم لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے چلیں گے۔